नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने लगभग 45 मिनट तक गहन मंथन किया, जिसके बाद ये बात सामने निकल कर आई। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। नव नियुक्त आयुक्तों के औपचारिक स्वागत के बाद शुक्रवार को पूर्ण आयोग यानी फुल कमीशन की मीटिंग शुरू हुई थी। ये बैठक लगभग 45 मिनट तक चली थी। पिछले लोकसभा की बात करें तो उस दौरान लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। परिणाम 23 मई को आए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे, जिनमें से 67% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बिहार में कैबिनेट विस्तार का मामला कई दिनों से अटका हुआ है। गुरुवार को कैबिनेट विस्तार होना था, लेकिन किसी कारण से ये नहीं हो सका था। संभावना है कि शुक्रवार को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी के संभावित मंत्रियों की सूची आ गई है। आज दोपहर बाद 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। पटना में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। गुरुवार को मंत्रिपरिषद विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में मीडिया को बताया जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि हम उसमें लगे हुए हैं और जल्द ही सब सामने आ जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भाजपा के शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची आ गई है। सूत्रों से ये भी खबर है कि शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि इसको लेकर ना तो कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही इसका खंडन किया गया है। गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के गठन के करीब 50 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से चर्चा है कि इस महीने की 15 तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और विभागों को नए मंत्री मिल जाएंगे। JDU से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, महेश्वर हजारी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं बीजेपी के संभावित मंत्रियों में मंगल पांडे, नीरज बबलू, नितिन नवीन, हरी साहनी, संतोष सिंह शामिल हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में अपने संभावित मंत्रियों के नाम की सूची सौंप दी है। भाजपा की सूची मिलने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। दूसरा, जीतन राम मांझी की ओर से भी इसमें पैंच फंसाए जाने की भी चर्चा थी। कहा जा रहा है कि मांझी बिहार सरकार में एक और मंत्री पद चाहते हैं, जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव में भी मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने गया सीट की दावेदारी कर NDA की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट विस्तार के सवाल पर कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है, वो जिसकी अनुशंसा करेंगे उन्हें ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। NDA में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त रुख अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे दी है। चुनाव आयोग इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर SBI को झटका दिया है। दरअसल SBI की ओर से चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के यूनिक कोड नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इसके लिए सोमवार तक का समय दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं। ADR ने अपनी मूल अर्जी में चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। SBI की ओर से चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी तो मुहैया कराई गई है, लेकिन यूनिक कोड नहीं दिए गए हैं। ऐसे में किन संस्थान या व्यक्ति की ओर से कब बॉन्ड खरीदा गया और उसे किस पार्टी ने बुनाया, इसकी जानकारी यूनिक कोड से मिल सकेगी। चुनावी बॉन्ड के कागज़ पर एक सीक्रेट नंबर होता है, इसे केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में ही जा सकता है। इसे चुनावी बॉन्ड पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जिससे उसकी खरीद और उसे भुनाने की तारीख से जोड़ा जा सके। SBI ने हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक अल्ट्रा न्यूमेरिक कोड की जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि एक एक बॉन्ड की जानकारी निकालने में काफ़ी समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में SBI में एक हलफनामा भी पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि उनकी ओर से 12 मार्च को चुनाव आयोग को एक लिस्ट सौंपी गई है। ये जानकारी SBI ने एक सील बंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पेन ड्राइव फाइल के जरिए चुनाव आयोग को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि SBI को हमारा निर्देश एकदम स्पष्ट था। हमने SBI को पूरी जानकारी देने को कहा था। SBI की ओर से यूनिक कोड की जानकारी नहीं दी गई है। SBI को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक पूरी जानकारी देने को कहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।